ओम शांति। एक छोटी सी घटना से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक रात एक चोर किसी राजमहल में प्रवेश हुआ। उसका इरादा चोरी का था और वहां उसने राजा की कुछ बातें चुपके से सुनी। राजा अपनी रानी से कह रहा था कि कल सुबह गंगा तट पर जो साधु तपस्या कर रहे हैं उनमें से किसी एक के साथ उनकी जो कन्या है उसका विवाह कर देंगे। उस चोर ने ये बातें चुपके से सुनी और उसके मन में संकल्प आया कि क्यों ना मैं भी कल सुबह गंगा तट पर जाकर बैठ जाऊं, साधु का वेश धारण कर। और ऐसे ही हुआ। दूसरे दिन गंगा तट पर जो बहुत सारे साधु महात्मा योगी सन्यासी और तपस्वी बैठे थे, ध्यान मग्न, उनके बीच जाकर यह चोर बैठ गया। वैसे ही वस्त्र उसने भी धारण कर ले जैसे कि उन साधुओं ने किए थे। राजा के सिपाही आए और वो सारे सिपाही एक एक साधु के पास जा जाकर कहने लगे कि क्या आप हमारी कन्या से विवाह करोगे। परंतु वो सारे तपस्वी वैरागी थे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो सैनिक इस युवक चोर के पास पहुंचे, जो ध्यान मग्न होकर बैठा था, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो भी चुप्पी साधे हुए था, परंतु बीच बीच में आंख जरूर खोल के देखता था, ये लोग क्या सोचते होंगे, ये लोग क्या कहते होंगे। सिपाही लौट गए और राजा से कहने लगे कि कोई भी साधु तैयार नहीं हुआ है, परंतु हां एक युवा सन्यासी जरूर है, शायद वो तैयार हो सकता है। राजा सोचता है कि क्यों ना मैं खुद जाऊं। और दूसरे दिन राजा अपनी संपूर्ण चतुरंगी सेना को लेकर गंगा तट पर पहुंचता है और उस युवक सन्यासी के पास जाता है, उससे अनुनय विनय करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है, भीख मांगने लगता है, कहने लगता है कि हे योगी, हे तपस्वी, एक आप ही हो जो योग्य हो और जो मेरी कन्या के साथ विवाह कर सकते हो। सन्यासी फिर भी अपनी आंखें बंद किए हुए, सन्यासी कहो या चोर कहो, उसने तो ये सब लालच में आकर किया था, ये वेश धारण करना। परंतु जब अब वो ध्यान लगाकर बैठा है और उसके सामने उस राज्य का सम्राट नतमस्तक है, मनोभाव परिवर्तन हो रहा है अंदर ही अंदर। अंदर ही अंदर उसके मन में उसे लगता है, जब मैं झूठ मूठ का साधु बन जाता हूं तो सैनिक तो क्या, यहां का सम्राट भी मेरे सामने झुकता है। यदि यदि क्या? यदि मैं सच्चा सच्चा साधु बन जाऊं तो फिर बात ही क्या। और इस घटना के बाद विवाह का विचार उसके मन से निकल जाता है और एक तीव्र वैराग उत्पन्न होता है इस जगत के प्रति और एक अभिप्साय की इच्छा जागृत होती है, क्यों ना मैं ऐसा एक श्रेष्ठ साधु तपस्वी बन जाऊं। तो एक चोर जब एक बनावटी साधु बनता है तो उसके सामने संसार झुकता है। इस संसार में यदि कहीं कोई नाटक हो रहा है, कहीं कोई रामलीला हो रही है, यदि वहां कोई राम बन जाता है और कृष्ण बन जाता है और लक्ष्मी नारायण बन जाते, या फिर कोई फिल्म का दृश्य, या फिर कोई सीरियल, कोई धारावाहिक, उसमें जो जो लोगों ने देवताओं के किरदार अदा किए, समाज की दृष्टि में वो सभी महान हो जाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, तुम इतने महान हो, कितने? केवल अब नहीं परंतु भविष्य में भी। कितने महान हो? दो चीजों के सामने संसार नमन करता है। कौन कौन से वो दो चीजें हैं? कौन कौन सी वो दो बातें हैं? एक तो तुम्हारे चित्र, भक्ति में द्वापर से तुम्हारे जड़ चित्रों की क्या होती है? पूजा होती है। और तुम चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो। वो जो जड़ चित्र है उनमें अब भी दिव्यता है और अब भी महानता है। वो है जड़, नॉन लिविंग इमेजेस। उसके आगे संसार झुक जाता है, उसके आगे संसार नतमस्तक हो जाता है। जरूर उनमें ऐसा कुछ पाता होगा जो उनमें नहीं है, ऐसी पवित्रता, ऐसी दिव्यता, ऐसी महानता, ऐसी ग्रेटनेस, ऐसी वो झलक पवित्रता की उन जड़ चित्रों में है। वहां संसार नमन करता है और तुम तो चैतन्य में है। और दूसरा उदाहरण दिया बाबा ने, कौन सा? अगर कोई बनावटी देवता बनता है तो जब तक वह किरदार वो निभा रहा है, जानते हैं सभी कि वो साधारण आत्मा है, फिर भी उसे अपना इष्ट समझ लेते हैं तब तक के लिए। तो नाम और रूप, हम इस संसार की ऐसी आत्माएं हैं कि जो दिव्यता और जो पवित्रता हम अब धारण करते हैं उसकी जन जन तक पूजा होती है। वाइब्रेशंस के रूप में हमारे जड़ चित्रों में वो रह जाती है। तो आज की मुरली में कौन किसको देख रहा है? बाबा क्या देख रहे हैं आज? क्या देख रहे हैं? अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे, परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। संसार की आत्माएं भी कहती है कि हमें परमात्मा पाल रहा है, परंतु तुम थोड़ी सी विशेष आत्माएं। कैसी आत्माएं हो? थोड़ी सी विशेष आत्माएं, प्रैक्टिकल में पल रहे हो। पालना, पालना शब्द का एक अर्थ वो पालना भी होता है जिसमें बच्चे को रखा जाता है। पालना करना, हमारी पालना कौन कर रहा है? हमारी परवरिश कौन कर रहा है? हमारा भरण पोषण सस्टेनेंस कहां से मिल रहा है? स्वयं भगवान से। तो कितनी नशे वाली ये बात है। सब के सब बैठे हैं सभा में और सब किससे दृष्टि ले रहे हैं? कल शाम की अव्यक्त वाणी किससे दृष्टि ले रहे हैं? स्वयं बाप दादा से दृष्टि ले रहे हैं। तो सभी अभी अभी संपूर्ण अलर्ट होके बैठेंगे और एक दृश्य अपने सामने इमर्ज करेंगे। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, ये सभा कैसी सभा है और हम कितने भाग्यशाली थे कल कि उस सभा में हम थे। एक सभा और एक जादूगर, एक दिलाराम और दिल कितने? अनेक। दिल वाले कितने? अनेक। पर दिल वाला दिलाराम एक। एक सभा, ऐसी अलौकिक सभा के हम साक्षी थे, ऐसी अलौकिक सभा में हम उपस्थित थे। कितना बड़ा न ये हमारा भाग्य है। तो अलर्ट होके बैठेंगे और अपनी आंखों के सामने एक दृश्य इमर्ज करेंगे। डायमंड हॉल में भगवान बैठा है, सारा हॉल भरा है इस संसार की सर्व महान आत्माओं से, परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं से, और मैं आत्मा बाप दादा से दृष्टि ले रहा हूं। कैसा भाग्य है इस वसुंधरा का, इस युग का, इस समय का। इस संगम का, इस सभा का, स्वयं जगत नियंता दिलाराम स्वयं अव्यक्त बाप दादा सम्मुख बैठे हैं। मैं देख रहा हूं इस सभा को, चारों ओर एक गहन सन्नाटा है। संसार की महानतम आत्माएं यह परमात्म मिलन सभी के दिल में एक ही समाया हुआ है, एक ही गीत, एक ही कविता, एक ही संगीत, हर दिल उसकी यादों में खोया है। दुर्गुड़ी तख्त पर विराजमान। मैं आत्मा देख रही हूं उसको। वह जो निर्बंधन है देख रही हूं उसको, अपने बच्चों के प्यार के बंधन में बंधते हुए। उसकी शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। अनंत प्रेम लिए हुए अनंत शक्तियां उस दृष्टि से मुझ आत्मा में समा रही है। मन का ये दर्पण मन की स्लेट स्वच्छ हो रही है। इस भूमंडल पर चहोर उसकी दृष्टि घूम रही है। इस दृश्य को मैं अपने हृदय की गहराई में समा रहा हूं। इस तरह समा गया है यह दृश्य, इस तरह समा गए हैं ये दो शब्द, मेरा बाबा। कोई निकालना चाहे तो भी निकाल ना सके। इसी दृश्य को लेकर पुनः मैं आत्मा इस देह के भान में प्रवेश करती हूं। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में एक शब्द प्रयोग किया है, अनुभवी मूर्त। यहां पांच बातें आती है जो कि मुरली में ही बिखरी हुई है। एक जगह बाबा ने कहा है सुनना और सुनाना, ये तो सब करते हैं। दूसरी बात है जानना। तीसरी बात है समझना। चौथी बात है अनुभव करना। और पांचवी बात है स्वरूप बनना। मुरली में बाबा ने बार बार कहा है जो सुना रहे हैं वो जानते हो, रिवाइज कराने के लिए बाप दादा सुना रहे हैं। तो एक है सुनना, एक है सुनाना, टू लिसन। परंतु ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है, उससे भी आगे की अवस्था है जानना, टू नो। चीजें कैसी है, क्या है, मुरली में कौन कौन सी बातें बाबा ने कही है, उसे जान लेना। उसके आगे की अवस्था है समझना, बाबा ने जो कहा है उसे जाना और अब उसे समझा। परंतु ये भी अंतिम स्वरूप नहीं है, उसके आगे की अवस्था है अनुभवी मूर्त। अनुभवी मूर्त, अनुभव करना। धार्मिक उस व्यक्ति को नहीं कहा जाता जिसने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, जिसने बहुत तीर्थ यात्राएं की है, जो बहुत पुण्यवान है। धार्मिक उसे कहा जाता है जो अनुभवी है। विवेकानंद ने कहीं अपने किसी प्रवचन में धर्म की परिभाषा दी थी, रिलीजन इज रियलाइजेशन। एक शब्द की परिभाषा, वन वर्ड डेफिनेशन, रिलीजन इज रियलाइजेशन। जब तक अनुभवी मूर्त नहीं बनेंगे तब तक ये ज्ञान केवल ज्ञान है। कितने ही नए साल आए और कितने ही नए साल चले गए, और मनुष्य में एक बहुत ही बड़ी खूबी है कि हर नई वस्तु को वो पुराना कर देता है, हर नई वस्तु को पुराना कर देता है, चाहे कितनी भी नई चीजें हो पुराना कर देगा उसको। ऐसे ही इन 16 सालों में, आज की जो मुरली चली है 31 दिसंबर 99, और कल जो बाबा आए थे 31 दिसंबर 2016, 16 साल का फासला। इन 16 सालों में कितने ही नए वर्ष आए और चले गए, कितनी ही 18 जनवरी आई और चली गई, कितने ही बार नए साल के संकल्प किए और न मालूम कहां खो गए। हर बार ऐसा ही नया दिन आया, पर जैसे ही नया दिन आए संकल्प तो बहुत किए परंतु कहीं खो गए। क्यों, क्यों पुराने हो गए? शायद विधि गलत थी, शायद जितना अनुभव करना चाहिए था उतना नहीं किया, केवल लिखने तक रह गया, केवल संकल्प किया और छोड़ दिया। कहीं ना कहीं गलती हुई है। फिर से नया वर्ष आया है, फिर से नया साल, फिर से नया दिन, फिर से नई उमंगे, फिर से नई चेतना, फिर से नए संकल्प। परंतु हर साल की तरह ना हो जाए ये भी डर रहता है अंदर ही अंदर। इसके लिए क्या करना है? एक एक बात का, एक एक शब्द का, एक एक गुण का, एक एक शक्ति का अनुभव, एम्बॉडीमेंट ऑफ एक्सपीरियंस। जब तक अनुभव नहीं करते तब तक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात आज बाबा ने की है, सबकॉन्शियस तक वो प्रिंट नहीं होता है, कॉन्शियस तक रह जाता है ऊपर ही ऊपर और खो जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या करना है? अनुभवी मूर्त बनना है, और अंतिम अवस्था है स्वरूप बन जाना। पहला सुनना, दूसरा जानना, तीसरा समझना, चौथा अनुभव करना, पांचवा स्वरूप बन जाना। ऐसे स्वरूप बन जाओ कि कोई तुम्हें देखे, चाहे कितने ही व्यस्त हो, असाधारण कार्य कर रहे हो, परंतु क्या नजर आए? अलौकिक। तो नई सदी में नवीनता कौन सी है? कुछ भी हो जाए अलौकिकता ना जाए। कार्य साधारण है, परंतु क्या झलक? तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी चाल, तुम्हारा हाल, तुम्हारे बोल, तुम्हारी चलन, तुम्हारे हालचाल, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी वृत्ति, कैसे हो जाए सभी अलौकिक, दिव्य, न्यारी और प्यारी। अमृत वेले से चेकिंग करो, बाबा ने कहा है। अगर अचानक कोई आके देख ले तो क्या नजर आए? अलौकिक फरिश्ते। वास्तव में हम जो है, जो हम एकांत में है, अकेले में है, अपने कमरे में जो है, वो हम वास्तविक है। बाकी दिन भर हो सकता है कहीं ना कहीं एक मुखौटा है। हम जतलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हम योगी है और तपस्वी है। कहीं ना कहीं वो एक भाव होता है दिखावे का, परंतु अध्यात्म दिखावा नहीं है। अध्यात्म वह पाखंड नहीं है, वह शो बिजनेस नहीं है। यह तो वो है जो हम वास्तव में है, जो है जैसे है। आज के ही मुरली में बाबा ने कहा है, छिप नहीं सकता है कोई भी। कहां कहां ये कौन बताएगा? आज की अव्यक्तवाणी सुबह की, बाबा ने कहा है पहले साकार ब्रह्मा था तो देख नहीं सकता था, परंतु अब अव्यक्त है, वह निराकार, वह अव्यक्त ब्रह्मा, दोनों ही देख सकते हैं। भक्ति में गायन है, हजार आंख, लाख आंख, हजार कान, तो देख सकते हैं। कहां कही ये बात, कौन बताएगा? सभी ने मुरली सुनी है सुबह, कहां पर कही ये बात बाबा ने? कहां कही? साधारणता। दो बातें जो देखी उसमें एक बात थी अलबेलापन। अलबेलापन में बाबा ने कहा साधारणता न आ जाए। भगवान का गायन है, ही दैट प्लांटेड द आई शैल ही नॉट सी। बाइबल में कहीं लिखा ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल ही नॉट हियर। जिसने दिया है क्या वो नहीं देखेगा? जिसने कान दिया है क्या वो नहीं सुनेगा? वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ सुन रहा है। हम वही है जो हम अकेले में है, एकांत में है। कौन से हमारे संकल्प है, कौन सी हमारी कल्पनाएं हैं, कौन सी फैंटेसी है, कौन सी भाव है, कौन सी भावनाएं हैं, क्या हम कर रहे हैं एकांत में, वो हम है, हमारा वास्तविक स्वरूप। हो सकता है दिन भर में हम जो घूम रहे हैं शायद दिखावा कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसलिए अनुभवी मूर्त बनना है। कोई भी हमें देख ले, अचानक से आके देख ले, बाबा ने शब्द प्रयोग किया है, कोई अचानक से आके देख ले, कोई अचानक से हलचल की अवस्था हो, उसमें भी साधारण चलन ना हो, साधारण बोल ना हो, हमारे चेहरे की पोज कैसी हो? हर्षित, अलौकिक, एकरस। तीन शब्दों का प्रयोग बाबा ने किया है, हर्षित, अलौकिक, एकरस। आज की मुरली में, कल की मुरली अव्यक्तवाणी, जिसमें बाबा ने कहा है यदि कोई दर्द भी हो तो क्या हो? सबने सुनी है कल बाबा की मुरली डायरेक्ट। यदि दर्द भी हो तो क्या? कौन बताएगा? चेहरा कैसे हो, शक्ल कैसी हो? मुस्कुराती हुई शक्ल कैसी हो? मुस्कुराती हुई। तो इस नए युग में, इस नए साल में, इस नई सदी में बाबा ने कहा सब कुछ परिवर्तन करो, और शुरुआत होगी संकल्प से। वाइब्रेशन, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, सारा आधार जो है वो संकल्प है। इसलिए इसी मुरली में बाबा ने, आज की मुरली में कहा है संकल्प शक्ति का परिवर्तन। आज की मुरली लास्ट पैराग्राफ, संकल्प शक्ति का परिवर्तन, संकल्प शक्ति का बीज। जो जो हम संकल्प करेंगे वो होगा। यदि संकल्प शक्तिशाली है तो हम शक्तिशाली, यदि संकल्प कमजोर है तो हम कमजोर। इस बीज को क्या करो, पानी देना है और धूप देना है। कौन सा पानी और कौन सी धूप? स्मृति की। स्मृति अर्थात बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करो, बाप से मेरा क्या वायदा है। स्वयं स्वयं को याद दिलाना। जैसे इसी सभा में यदि कोई माता अपने बेटे को याद कर ले जो कहीं दूर है, और उसकी याद आ जाए, यहां बाबा की याद में थे, यहां क्लास सुन रहे थे, ज्ञान का चिंतन कर रहे थे, सुन रहे थे, अचानक आंसू आ जाएंगे। क्यों? जैसे ही स्मृति आई स्वरूप में टिक गए। तो स्मृति जहां है वहां स्वरूप प्रकट हो जाता है, स्मृति जैसी है वैसी ही स्थिति प्रकट हो जाती है। इसलिए संकल्प आधार क्या है? संकल्प, संकल्पों की चेकिंग, संकल्पों पर अटेंशन। इस नई सदी में बाप को प्रत्यक्ष करना है। कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? अपने फरिश्ते स्वरूप से। तो अभी हम फिर से अलर्ट होके बैठेंगे, और आज की मुरली में बाबा ने जो एक संकल्प दिया है, मैं चलता फिरता फरिश्ता हूं, पुरानी बातें पुराने संस्कार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो बहुत ही साधारण सा संकल्प, परंतु जैसे ही इस संकल्प में स्थित होते हैं, जैसे इन शब्दों में हम स्थित होते हैं, उस भाव में वो भावना वो स्मृति हमारे चेतना में छपती है, वह स्वरूप प्रकट होने लगता है, सब कुछ वैसे ही अनुभव होने लगता है। और यही विधि है। तो फिर से सभी बैठेंगे। आज नए वर्ष की शुरुआत में इस पहले दिन मैं ब्राह्मण आत्मा एक श्रेष्ठ संकल्प करती हूं। मुझे बाप समान फरिश्ता बनना ही है। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं अति तेजस्वी एक तपस्वी आत्मा हूं। इस देह को यहीं छोड़ अपने फरिश्ते स्वरूप में चल रही हूं ऊपर। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। ये व्यक्त देह, ये व्यक्त संसार ये व्यक्त संबंध इन सब से परे मैं फरिश्ता लाइट के गर्भ में जा रहा हूं ऊपर, अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख बाबा की दृष्टि बाप दादा के प्रकटी से निकल रही यह शक्तियां कैसी सुखमय अवस्था है, कैसा अतीन्द्रिय सुख है, एक उसी की याद प्रेम के सागर में मैं समा गई हूं, एक की याद एक वही इसी शक्तिशाली स्थिति में अतीन्द्रिय सुखमय स्थिति अतीन्द्रिय सुखमय अवस्था इसी स्थिति में मैं फरिश्ता पुनः नीचे उतर रहा वापस अपनी इस व्यक्त देह में प्रवेश करता हूं। ओम शांति। समय की पुकार क्या है? क्या पुकार है समय की? जल्दी जल्दी बाप समान बनो। आज सुबह की अव्यक्त वाणी से समय की पुकार क्या है? सभी आत्माएं बाप को पहचान ले। आज की मुरली से समय की पुकार क्या है और स्लोगन क्या है? स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं, और समय की पुकार चाहे कुछ भी हो जाए अलौकिकता नहीं छोड़नी है। कल की मुरली में एक बहुत सुंदर वाक्य था श्याम की, योगेश्वर की लाइन में आना है तो क्या करना है? सभी चाहते हैं योगी बनना। जब हम यहां आए थे बाबा के पास, वो दिन को याद करो कि किस तरह की उमंगे हमारे मन में थी, कैसे संकल्प लेकर इस भूमि में आए थे। एक महान तपस्वी और महान योगी हमें बनना था। कल की मुरली में बाबा कह रहे हैं योगेश्वर की लाइन में आना है, योगेश्वर की श्रेणी में यदि गिना जाना चाहते हो तो क्या करना होगा, क्या करना होगा भाइयों की तरफ से। कल की अव्यक्त वाणी शाम की, योगेश्वर की लाइन में आना है तो भाइयों की तरफ से कोई नहीं, कल ही तो सुनी है, इतना जल्दी नहीं भूलना, थोड़ा लेट भूलना। जैसे मुरली चलती है उसको तुरंत, उसको 24 घंटे के अंदर रिवीजन हो जानी चाहिए, नहीं तो मन भूल जाता है। स्मृति का जल और स्मृति की धूप उसे मिल जानी चाहिए, नहीं तो यह पौधा कुंभला जाता है। यह फूल बहुत ही नाजुक है ज्ञान का। तो योगेश्वर की लाइन में आना है तो इस अवस्था का अभ्यास करना है। कौन सी अवस्था का? सुखमयी, अतीन्द्रिय सुखमयी स्थिति का अभ्यास। कब करना है? बार बार करना है, दिन भर करना है, अटेंशन देना है इस बार, अटेंशन और प्रैक्टिस। दो शब्द बाबा ने बार बार कहे, अटेंशन प्रैक्टिस, अटेंशन प्रैक्टिस, अटेंशन प्रैक्टिस, अटेंशन करो, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, ट्रायल करो। अटेंशन धीरे धीरे, अभ्यास बार बार, बार बार अभ्यास करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। यदि हम खुद ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यदि हम खुद ही अटेंशन नहीं देंगे, यूपी का ग्रुप, यूपी वालों से बाबा ने कहा दूसरों को कहेंगे तो क्या होगा, फिर हम जो चीज खुद नहीं कर रहे और दूसरों को कह रहे तो क्या होगा, शर्म आएगी। हम यदि अमृत वेला क्लास कराएं और हम खुद ही अमृत वेला डावाडोल है, कभी उठते हैं कभी नहीं उठते, कभी उठते हैं परंतु शक्तिशाली स्थिति नहीं है, और यदि हमसे कहा गया कि किसी को अमृत वेले का महत्व समझाओ तो क्या शर्म नहीं आएगी। इसलिए योगेश्वर की लाइन में आना है तो कल की मुरली से एक होमवर्क क्या है, योगेश्वर बनना है। दूसरा होमवर्क कौन सा है, बाप जो है वो दिल में समाया हुआ हो, कोई यदि ऐसा छिपा के रखो, कैसा, यदि कोई निकालना चाहे भी तो निकाल ना सके। Neither death nor life, nor height nor depth, nor angels, nor principalities, nor any creature present, nor any creature to come, or any other creature shall be able to separate us from the love of God. बाइबल में लिखा है इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई प्रधानता नहीं है, ऐसा कोई फरिश्ता नहीं है, ना ही वो ऊंचाई, ना ही वो गहराई जो हमें परमात्मा के प्रेम से अलग कर सके। भगवान को ऐसे दिल में छिपा लो, मुश्किल से, क्या कहा बाबा ने, मुश्किल से निकलता है। एक जगह तो कहा ऐसा है, दूसरी जगह कहा ऐसा छिपा दो उसको कि कोई भी परिस्थिति उसे निकाल ना सके। क्या ऐसा छपा है, छिपा है, छाया है हमारे दिल में, इसको चेक करना है। सबकॉन्शियस माइंड तक वो चला जाए। हम सम्मान तो बहुत लेते हैं, गीत तो बहुत गाते हैं, मेरा बाबा बाबा ने पूरी मुरली मेरा बाबा पर कही, उसी के गीत, वही मेरा बाबा दिल से निकल रहा है, परंतु ये जो मेरा बाबा है ये अंतस की गहराई से निकले, प्राणों की गहराई से निकले, ऊपर से नहीं। नॉट एवरी वन हु कमेट एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माई फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। केवल ऊपर ऊपर से कहने वाले नहीं, परंतु जो उसकी श्रीमत है वो मानता है, ऐसे ही केवल। तो फिर से आज की मुरली पर आते हैं, समय की पुकार, समय की पुकार है, अलौकिकता न जाए, हर कार्य में अलौकिकता रहे। हम वह व्यक्ति संसार के लोग नहीं है, हमारा वो जो पुराना मैं था वो खत्म हो चुका है, ये हमारा नया जीवन है, सब कुछ यहां नया है, ये परिवार भी नया है, इस नएपन हमारे में हो। जब हम नवीनता शब्द कहते हैं, चार चीजें मुख्य रूप से मन में आती है। यह हम जो सोचते हैं नवीनता शब्द का अर्थ क्या है, एक नवीनता अर्थात नयापन, न्यूनेस, दूसरा नवीनता अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, जो अब तक की दिनचर्या थी अब हमें उसे परिवर्तन करना है, जो अब तक के संकल्प थे अभी उन्हें परिवर्तन करना है, जो अब तक की कल्पनाएं थी, भावनाएं थी, प्लान था, प्लानिंग थी, उसको अभी परिवर्तन करना है। तो सेकेंड अर्थ है नवीनता का, परिवर्तन। तीसरा अर्थ है जो पुराना है वह समाप्त, पुराने को समाप्त करना। और चौथा एक अर्थ है, कौन बताएगा? नवीनता शब्द के चार अर्थ है, पहला नयापन, दूसरा परिवर्तन, तीसरा पुराना समाप्त, और चौथा नया क्या, चौथा अर्थ है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, रचनात्मकता। हम हमारे जीवन में कहां नयापन लाए, कहां क्रिएटिविटी लाए, इस नए युग में इसकी प्लानिंग बनानी है। आज की एक तारीख है, 18 जनवरी तक हमें अपने पुरुषार्थ में क्या नवीनता लानी है, कौन सी बातों को डिलीट करना है, कौन सी चीजें परिवर्तन करनी है, और कौन सी क्रिएटिविटी लानी है जो आज तक नहीं की हमने, जब से हम बाबा के बने और आज तक। ऐसी वो कौन सी बातें हैं, ऐसे वो कौन से पुरुषार्थ के पॉइंट है, ऐसा वो कौन सा चिंतन है जो हमने आज तक नहीं किया, वो करना है। ये है क्रिएटिविटी, ये चार चीजों को समाना है इस बात में। तो समय की पुकार है कि अलौकिकता न जाए, स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। इसके लिए बाबा ने कहा चार बातें याद रखो, शुभ 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 शुभ। कौन सी वो चार शुभ है? सबसे पहला बाबा ने कहा, ये सब जानते हैं, बाप केवल रिवाइज करा रहा है। वैसे तो एक मुरली है, 26 जून 1969, अव्यक्त महावाक्य, 26 जून 1969, पढ़ाई अब पूरी हुई, बाप मिलने आते हैं। पढ़ाई तभी पूरी हो चुकी है, पढ़ाई अब पूरी आती होगी, अब बाप मिलने आते। कल भी कहा था रमत गमत, याद से क्या होता है, खुशी होती है और रमत गमत। तो बाबा केवल बहलाने आते हैं, मिलने आते हैं, पढ़ाई तो कब की पूरी हो चुकी है, क्लास बहुत आगे बढ़ गया है। तो चार बातें हैं, कौन कौन से शुभ है? पहला शुभ शुभ चिंतक, दूसरा शुभ शुभ चिंतन, तीसरा शुभ भावना, चौथा शुभ स्मृति और स्वरूप। हम कहते तो हैं हमारी सभी के प्रति शुभ भावना है, परंतु शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी आत्मा के प्रति मन में कुछ न कुछ घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, सूक्ष्म घृणा छिपी हुई है। इसी मुरली में बाबा ने एक साल का पोता मेल देखा, पूरा नया युग आ रहा है, 21वीं सदी चालू हो रही है, 99 पूरा हो रहा है, 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी पूरी हो रही है, 21st सेंचुरी चालू हो रही है। बाबा ने एक साल का पोता मेल देखा, उसमें दो बातें देखी, और दो ही बातें बाबा ने कहा हेवी डोज है। पहला था समाया कितना, और दूसरा था दो शक्तियों की कमी थी, दूसरी मिटाया कितना। समाते नहीं है क्योंकि निगेटिव है, जब तक निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे समाया नहीं जा सकता कोई भी चीज। तो फर्स्ट स्टेप है निगेटिव को पॉजिटिव में करना। बाबा ने कहा इसीलिए ये निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए वो चार बातें भूल जाती है। हम कहते तो है हमारी शुभ भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं, परंतु शायद मन के किसी कोने में संसार की किसी एक आत्मा के प्रति भी हमारे मन में भावनाएं शुभ कम है, तो हम संपूर्ण नहीं बन सकते किसी एक आत्मा के प्रति केवल। इसके लिए इस नए वर्ष में हमें अपने मन की जो स्लेट है, प्लेट है, पेपर है, उसे क्या करना है, साफ कर देना है, क्लीन कर देना है एकदम। किसी के प्रति भी कुछ निगेटिव समाया हुआ न हो, बट हाउ, कैसे किया जाए ये काम? सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में वो छिपा है, इतनी गहराई में है, इतनी परतें हैं चेतना की, उसमें वो छिपा है। शायद किसी और जन्म का होगा, ये भी हो सकता है। कैसे क्या करें कि हरेक के मन के प्रति हमारे मन में शुभ भावना हो? क्या हम करें कि जिससे हरेक के मन, हरेक के प्रति शुभ चिंतक हम बन जाए? शुभ स्मृति और शुभ स्वरूप। कुछ आत्माओं को माफ करना पड़ेगा, किससे माफी मांगनी पड़ेगी, यह सबसे बड़ा कार्य है, ये सबसे बड़ा कार्य करना है इस नए वर्ष में। किसी के भी प्रति हमारे मन में निगेटिव ना भरा हो, जब तक वो निगेटिव भरा हुआ है उसको समा नहीं सकते, अगर समा नहीं सकते तो मिटा नहीं सकते, और जो मिटा नहीं सकते वो स्लेट क्लीन और क्लियर नहीं होगी। फरिश्ता अर्थात क्लीन और क्लियर, नया लिखा भी नहीं जा सकता। बाबा ने कहा नया लिखेंगे तो स्पष्ट नहीं होगा। फिर से अलर्ट होके बैठेंगे। अब इस प्लेट को, इस स्लेट को, इस पेपर को हमें क्लीन करना है आज ही के दिन, क्योंकि आज पहली तारीख है। इतना स्पष्ट कर देना, इतना क्लीन कर देना है, स्वच्छ कर देना है मन के इस प्लेट को, कि संसार की किसी भी आत्मा के प्रति हमारे मन में अशुभ भाव, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, बदला कुछ भी ना हो। चाहे किसी ने हमारे साथ कुछ भी किया हो, परंतु बाबा ने ही हमेशा कहा है ये ड्रामा एक्यूरेट है, ये ड्रामा सत्य है, इसमें कोई अन्याय नहीं है, ये ड्रामा विविधतापूर्व है, ये ड्रामा रहस्यमय है, इसमें कहीं कोई अन्याय नहीं है। इसके लिए हमें आत्माओं को माफ कर देना है और आत्माओं से माफी मांग लेना है। जो कुछ भी हुआ वो मेरा ही हिसाब किताब था, मेरा ही कार्मिक अकाउंट था, अच्छा ही हुआ। अगर वो ना होता तो ये भी ना होता, अगर वो ना होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, आज हम बाबा के इतने समीप ना होते। जीवन में जो कुछ दर्दनाक, दुखद, पीड़ादाय हुआ और कोई व्यक्ति उसके लिए दोषी था, सबको क्षमा भाव। अपराधी के लिए सबसे बड़ा दंड है क्षमा। मैं फरिश्ता अंतवाहक शरीर को धारण कर उड़ रहा हूं। इस संसार से परे तत्वों से पार सूक्ष्म वतन में देख रहा हूं सम्मुख एक बहुत विशाल पर्दा है, एक बहुत बड़ी प्लेट, पिछले एक वर्ष का मेरे जीवन में जो भी घटा है, 12 मास सारी ही घटनाएं, एक एक दिन यहां पर लिखा है। ये मेरे ही मन की प्लेट है, 12 मास असंख्य घटनाएं, मेरी दृष्टि इन सभी घटनाओं का अवलोकन कर रही है। कहीं तो बाबा के प्यार में खोया हुआ हूं, कहीं तो ज्ञान योग की उच्च अवस्था है, कहीं तो सेवाओं की खुशी है, कहीं तो संबंधों की मिठास, कहीं पुरुषार्थ का उमंग, कहीं परमात्म प्रेम में आंखों से आंसू है, कहीं भाग्य की स्मृति है, कहीं सेवाओं का प्यार, कहीं संपूर्ण समर्पण भाव। देख रहा हूं अपनी ही भिन्न भिन्न पोजेस, परंतु साथ साथ किसी कोने में ये कैसी उदासी थी, ये कैसे कड़वे बोल मुख से निकल गए, ये कौन सी चाल थी, कैसी स्मृति थी जिस संसार को छोड़ा है उसी की स्मृति, क्यों दृष्टि में ये चंचलता थी, क्यों वृत्ति चलायमान हो रही थी। देख रहा स्वयं को, ये कैसी विस्मृति थी, उसी की विस्मृति जिसे जीवन दिया, अपने ही एक वर्ष को देख रहा, कहीं तो शुभ भावनाएं हैं, कहीं तो शुभ चिंतक के शिखर शिखर पर हूं, शुभ स्वरूप है, शुभ स्मृति है। परंतु देख रहा हूं ये घृणा कहां से आई थी, ये बदले का भाव क्यों प्रकट हुआ था। ये कर्मेंद्रियों की चंचलता क्यों थी, यह आवेश, यह चिड़चिड़ापन। ये वासना की लहरें क्यों देहभान ने आंदोलित किया था चित्त को, अपने ही मन को देख रहा हूं। आज इस नए वर्ष मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो, जो जो अशुभ था जो जो श्रीमत के विरुद्ध था, जो जो निगेटिव था, अपनी दृष्टि से सबको नष्ट कर रहा हूं। मेरे मन की यह स्लेट स्वच्छ हो गई है, संपूर्ण स्वच्छ। देख रहा हूं स्वयं बाप दादा मेरे बाजू में खड़े हैं, यह स्लेट स्वच्छ तो हुई थी परंतु जो निगेटिव वाइब्रेशंस रह गए थे अब स्वयं भगवान दृष्टि दे रहा है। परमात्मा दृष्टि मेरे मन के प्लेट पर पड़ रही है। एक एक संकल्प शुद्ध हो रहा है, एक एक भाव, एक एक भावना, एक एक कल्पना, एक एक दृष्टि, हर एक वृत्ति, हर एक स्मृति, हर एक हरेक स्वर, हरेक कर्म परमात्मा दृष्टि की छत्र छाया। अब ये प्लेट संपूर्ण स्वच्छ है, संपूर्ण स्वच्छ। मन के इसी प्लेट को धारण कर मैं फरिश्ता पुनः नीचे उतरते हुए इस देह में प्रवेश करता हूं। ओम शांति। बाबा ने पोतामेल में दो बातें चेक की, एक तो दोष शक्तियां और दूसरी बात थी अलबेलापन। जब तक अलबेलापन है पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आएगी, जब तक अलबेलापन है पास विथ ऑनर नहीं हो सकेंगे, जब तक अलबेलापन है क्या नहीं हो सकेगा, उड़ नहीं सकेंगे। और ब्राह्मणों के अलबेलापन का एक शब्द है, कौन सा? सब सब चलता है। दस बातें बताओ जो ब्राह्मण कहते हैं सब चलता है, कौन कौन सी वो दस बातें, या ज्यादा भी बता सकते हैं जो ब्राह्मण कहते हैं चलता है। कौन संपन्न बना है? ये संपन्न बनना हमारे बस का काम नहीं है, जिसको बनना है बने, हमारे तो बस का बात हमारे बस की बात नहीं है। या फिर कौन बना है? और बाबा के हो गए, हम तो बाबा की याद में ही है, हम तो निरंतर याद में ही है। और ड्रामा है, चलो गलती हुई कोई बात नहीं, आज अमृत वेला लेट हो गया, ड्रामा अनुसार हुआ, बाप को ड्रामा पसंद है, बच्चों को भी ड्रामा पसंद होना चाहिए। और ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। और सब चलता है में कौन कौन सी बातें आती है पीछे से, एवरीथिंग गोज, कौन कौन सी बातें आती है? समय ही ऐसा है, क्या करें, सेवाएं बहुत है, इतना तो होता ही है, इतना तो चलता ही है। टाइम टाइम नहीं मिलता है, हम बहुत बिजी है, टाइम नहीं मिलता है। दादी जानकी कहती है योगी बनने के लिए टाइम की आवश्यकता नहीं है। और अभी समय बहुत पड़ा है, अभी बहुत समय पड़ा है, कर लेंगे। बाबा ने इस मुरली में बड़े कड़े शब्द कहा है ना, बाबा सख्त नहीं बोलना चाहता परंतु सख्त बोल रहे, कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे। कौन से कड़े शब्द? बच्चे कहते हैं बाबा हम देख लेंगे, बाप कहते हैं बाप भी देख लेगा। पिछले 5 सालों की मुरली में कल की जो मुरली थी, कल की अव्यक्तवाणी, उसमें पहली बार बाबा ने थोड़े कड़े शब्दों का प्रयोग किया, ऑर्डर और हुक्म। पिछले कुछ सालों में इस तरह के शब्द बाबा नहीं प्रयोग कर रहे हैं, कल की मुरली में ये दो शब्द आए हैं, ऑर्डर, ऑर्डर माना ऑर्डर, रोकने बोलो तो रुक जाए, जब चाहे तब रुक जाए, कंट्रोल ऑफ माइंड की स्टेट, स्टेट ऑफ कंट्रोल ऑफ माइंड हो, ऐसा कंट्रोल ऑफ माइंड हो, जब कहो रुको तो रुक जाए। तो अलबेलापन, आलस, महीन रूप, मोटा रूप, दो रूप बाबा ने कहे। महीन रूप अर्थात ये संकल्प, और कौन से संकल्प हो सकते हैं सब चलता है के? सुबह से चालू करो अमृत वेले से रात तक। क्या क्या 5-10 मिनट आगे पीछे चलता है। और क्या? गुस्सा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन चलता है, जरूरत है, ये तो चलता ही है, जरूरत है, नहीं तो लोग हमको कंट्रोल करेंगे, दिखाना पड़ता है ऊपर से। और रात देर से सोए थे इसके लिए लेट हो गया, कारण तैयार है। बाबा ने कहा कारण को निवारण करो तब नव निर्माण कर सकेंगे, ये कारण क्या है इनको ढूंढो, मेरा हिसाब किताब है, बात ऐसी थी, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, परिस्थिति ऐसी थी, आज की मुरली में शब्द है ये सारे, ये था इसके लिए ये हुआ, बाबा को ही बता रहे ये ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ। तो इस तरह से हर एक निकाले, मैं अपने जीवन में सब चलता है, ये जो शब्द बाबा ने कहा कहां कहां है मेरे पास, ये भी एक होमवर्क है आज की मुरली से, सब चलता है। समय ऐसा आएगा, कल की मुरली शाम की अव्यक्तवाणी, बाबा ने एक जगह कहा है समय ऐसा आएगा, समय के लिए एक ही शब्द कहा है, एक ही वाक्य, समय ऐसा आएगा, इसलिए जब रोकना चाहो तब रोक सको, माइंड का कंट्रोल ऐसा हो वो स्थिति में जब स्थित होना चाहो स्थित हो सको, तो योगेश्वर की लाइन में आएंगे, इस बात में ढीलापन ना हो, यही तो पुरुषार्थ करना है। तो यहां ये दो बातें कही बाबा ने, उसके बाद परमधाम में जाने की बात कही है बाबा ने, बाबा मार के या प्यार से कैसे भी करके लेके ही जाएगा। अज्ञानियों को मार के और बच्चों को प्यार से, परंतु ये बात नहीं कहा कहीं बाबा ने। बाबा ने आगे किया, कैसे भी करके जबरदस्ती आपको ही जाना है, आपको ही बनना है, बनना पड़ेगा। अगर अभी नहीं बने तो समय बनाएगा। एक ऑफिस था, उस ऑफिस में एक दिन अचानक एक अनाउंसमेंट हुई कि उस ऑफिस में कम से कम, बड़ा ऑफिस था, 50 लोग एम्प्लॉय थे जो काम करते थे। एक दिन अचानक एक नोटिस निकली कि आपके ऑफिस में वह व्यक्ति जो आपकी तरक्की में सबसे ज्यादा बाधा है, उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसी अनाउंसमेंट करा दी गई और उसकी जो उसका जो दाह संस्कार है, फ्यूनरल है, वो वहां पर उनका एक बड़ा हॉल है, वहां होने वाला है। तो सब लोग सोचने लगे आखिर वो है कौन कि जिसकी मृत्यु हो गई है और वो हमारे ही ऑफिस में काम करता है और मेरे ही काम में सबसे ज्यादा जिसने बाधा अड़ंगा डाला है, हमेशा हमारी तरक्की में बाधा है, ऐसा जो एक व्यक्ति है इस ऑफिस का, उसकी अचानक में कार दुर्घटना या किसी कारण से मृत्यु हो गई है और ऐसे ऐसे टाइम पर, इतने इतने ये दूसरे दिन ये टाइम पर उसकी उसका संस्कार है। तो सब लोग वहां, वो जो हॉल था और उसके बीच में वो होने वाला था और एक गड्ढा वहां बनाया गया था, उसमें वो जो एक गड्ढा बनाया गया था जिसमें उसको थोड़े देर के लिए रखा था, बाद में निकालकर उसको जलाने वाले थे। तो सारे लोगों की इतनी भीड़ हो जाती कि कौन ये व्यक्ति है कि जिसकी मृत्यु हो गई और हमें ही पता नहीं। तो वो मैनेजर कहता है एक बार एक ही आदमी जाएगा उसको जो भी करना है, फूल चढ़ाने हैं या जो भी करने के लिए। वो एक कांच का एक है उसके अंदर, वो कॉफिन में रखा हुआ है। तो पहला व्यक्ति जाता है और देखता है, एकदम आश्चर्य हो जाता है उसको और वापस आता है। दूसरा जाता है, उसको भी आश्चर्य होता है, जो भी जाता है उसको आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कांच रखा रहता है, जो भी व्यक्ति जाता है उसको स्वयं वही दिखता है और वहां एक दूसरा भी स्लोगन लिखा रहता है बाजू में कि तुम्हारी उन्नति में केवल यही व्यक्ति एकमात्र बाधा है और वो कौन है? तुम। और दूसरी एक जगह लिखा रहता है तुम्हारी उन्नति केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो कौन है? तुम। दूसरा हमें कितना भी क्लासेस कराए, कितनी भी पालना दे, कितना भी हमें समझाए, कितना भी हमारे ऊपर काम करे, काम जो करना है वो हमें ही करना होगा, दूसरा नहीं कर सकता। ये कितना भी कोई कितना भी फोर्स करे, यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैनॉट मेक इट ड्रिंक द वॉटर। घोड़े को तालाब के पास लेके जाया जा सकता है पर पानी नहीं पिलाया जा सकता है, उसे खुद पीना पड़ेगा। वो प्यास उसको होगी तो वो पिएगा। यह जो प्यास है, प्रभु प्रेम की प्यास हमारे अंदर हो तब हम उस प्रभु प्रेम के उस अमृत को पी लेंगे। उसके सारे महावाक्यों को अपने नस नस में समा लेंगे, उसके ज्ञान की एक एक पॉइंट को ऐसा भर देंगे कि उसके अतिरिक्त तो वहां और कुछ ना हो। ऐसा भर देंगे कि कोई निकालना चाहे तो भी वो निकले ना। बाप से प्यार अर्थात उसके महावाक्यों से प्यार, बाप से प्यार अर्थात मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात मधुबन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात इस परिवार से प्यार, बाप से प्यार अर्थात इस यज्ञ से प्यार, इन चारों ही चीजों से प्यार अर्थात परमात्मा प्रेम। तो कोई भी कारण नहीं, कोई भी अलबेलापन नहीं, मन की स्लेट क्लीन हो, ऐसी हमें अपनी स्थिति बनानी है। इसी मुरली में लास्ट में बाबा ने संकल्प की बात कही है, मुझे बाप समान फरिश्ता बनना है, पुरानी बातें पुराने संस्कारों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, अनादि आदि संस्कारों को इमर्ज करो, सारा खेल मर्ज और इमर्ज का है, स्मृति और विस्मृति का है। जिस समय जिस दिन जिस पल हमें विस्मृति हो जाती है, गलतियां होती है जीवन में। एक व्यक्ति है जो यहां से चल रहा है, आंखें खुली हुई है, कभी नहीं गिरेगा नीचे। परंतु जैसे ही थोड़ी सी मूर्छा, थोड़ा सा बेहोशी, तुरंत गिर जाएगा। जब हमारे अंदर बेहोशी आती है, ये अवेयरनेस की बेहोशी, थोड़ा सा ही अवेयरनेस कम हो जाता है, तुरंत हम गिरते हैं। यहां अब हम सभी बैठे हैं, अगर बहुत श्रेष्ठ चेतना की स्थिति में बैठे हैं, तो मन में कोई विकार का संकल्प, कोई नेगेटिव संकल्प, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। इसी मुरली में बाबा ने कहा, व्यर्थ बातें बीती बातें, व्यर्थ चलन बीती चलन न हो, फरिश्ता अर्थात। ये यहां नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक शक्तिशाली वायुमंडल में बैठे। ऐसी ही स्थिति, ऐसा ही वायुमंडल में हम अगर हमेशा रहे, यही स्मृति इमर्ज रूप में रहे, तो हम गलतियां कर ही नहीं सकते, नीचे आएंगे ही नहीं। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा, यह ज्ञान सूर्य तुम्हारे स्मृति में कभी अस्त ही ना हो, तो निर्विघ्न हो जाओगे। ज्ञान सूर्य यदि तुम्हारे स्मृति से कभी अस्त ही ना हो, तो निर्विघ्न हो जाओगे। ये सूर्य सदा ही उदय हो, ऐसी ज्ञान की धधकती ज्वाला, ऐसी ज्ञान की धधकती अग्नि हमारे अंदर जलती रहे, ऐसा धधकता वैराग, ऐसी घनघोर साधना हमारी होती रहे। ये साधना का पथ है। सोना नहीं है, मूर्छित नहीं होना है, उदास नहीं होना है, गिरना नहीं है। Our greatest glory lies not in never falling, but in rising every time we fall. जितनी बार अगर गिर भी गए, फिर से उठना है। उठो फिर चलो, उठो फिर चलो, परंतु रुकना नहीं है। ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। तो ये जो संकल्प है परिवर्तन का, बाबा ने कहा ये बीज है, इस बीज को स्मृति का जल दो और स्मृति की धूप दो, तो फल निकलेगा। यहां पर आज की जो मुरली है वो पूरी होती है। अभी हम चलते हैं कल की मुरली, हमारे पास 5-10 मिनट और है। कल की जो अव्यक्त वाणी थी, उसमें आप सब ने जो चिंतन किया, उसमें से ऐसी कौन सी पॉइंट्स निकाली जो सबने सोचा हमें करनी है, सभी बताएंगे। सबने कल की मुरली सुनी, और यह हमारा इतना भाग्य था कि हम उस सभा में थे जहां एक जादूगर, एक सभा, एक दिलाराम, इतने दिल और इतने दिल वाले, उस सभा में हम उपस्थित थे। ये हमारा भाग्य है। वो कौन सी पॉइंट्स है, वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सा गृह कार्य है जो हमें कल की मुरली से लेना है और अगले 18 दिन है हमारे पास करना है। बाप को दिल में रखना है, मन मना भाव की। ये पहली बहुत सुंदर परिभाषा अब तक बाबा ने कहा है, मन मना भाव, अर्थात मन मना भाव अपना मन मेरे में लगाओ। कुछ दिन पहले साकार मुरली थी, मन मना भाव सबसे स्वीटेस्ट शब्द है संसार का, सबसे मीठा, सैकरीन की एक बूंद, मन मना भाव। तो बाबा को दिल में बसा के रखना, एक होता है ऊपर ऊपर से, एक होता है गहराई से, सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाए, क्या करे। ऊपर ऊपर नहीं, दिखावा वाला नहीं, आडंबर वाला नहीं, ढोंग वाला नहीं, मुख से कहने वाला नहीं, अंदर चेतना में इम्प्रिंटेड, इंडेंटेड ऑन द प्लेट ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, कैसे वो छप जाए। एकांत में जाना होगा, मौन में चलना होगा, एकांत की यात्रा करनी होगी, तब वो अंदर छपेगा, छप जाएगा इस चेतना में। तो सबसे पहला काम कौन सा है कल की मुरली से, बाबा कभी भूले ना, बाबा मन में दिल में समाया हुआ हो, बाबा कोई निकालना चाहे भी तो निकाल ना पाए। और ये होगा, मुरली के अंतिम वाक्य थे, बाप का वरदान है, बाप का वरदान है, साथ साथ वरदान जोड़ा है बाबा ने। तो सारे दिन भर में बाबा ने कहा, 1 सेकेंड में ओम शांति स्वरूप, 2 मिनट क्या करो, एक रस मिटिको। मुरली में एक जगह एक सेकंड, एक जगह दो मिनट है, एक जगह सवा घंटा, एक जगह आधा घंटा, एक जगह एक घंटा, अलग अलग बातें बाबा ने बताई है। दो मिनट एक रस्तिति मिटिको, सारे दिन भर ही अभ्यास करना है, कोई भी दो मिनट एक रस्तिति मिटिकना। आधा एक सेकंड ओम शांति स्वरूप में टिक जाओ, मन मना भाव की स्थिति में टिक जाओ, एक की याद और एक ही मन मना भाव, बार 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 याद करने का अभ्यास। हमारा सुबह का चार्ट बहुत अच्छा है, हमारा शाम का चार्ट अच्छा है, परंतु जो बीच का समय है 9 बजे से 5 बजे तक, सेवा का जो क्षेत्र है वही पर माया सब चालू होती है। जैसे एंट्री करो माया चालू। वहां हमारे पास हॉस्पिटल में जो स्टाफ है सिस्टर्स और जो ज्ञान में चलते हैं, बड़ी अच्छी बात एक कहते हैं कि हमारी स्थिति सुबह तो बहुत अच्छी रहती है, अमृत वेला बहुत पावरफुल स्थिति रहती है, मैं फरिश्ता हूं। फिर मुरली सुनते हैं तब भी बहुत पावरफुल स्थिति रहती है, नाश्ता करते तब भी स्थिति रहती है, जैसे ही वार्ड में एंट्री करते हैं और पता चलता है कोई नर्सिंग असिस्टेंट आया नहीं है, कोई काम किसी को दिया था उसने किया नहीं है, नाइट वाले स्टाफ ने जो करना था वो किया ही नहीं है, और हमें अब डांट पड़ रही है, तो वो जो मैं फरिश्ता हूं वो कहां गुम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। एक पेशेंट दूसरा पेशेंट, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, और खो गया, बाबा भी है ये भी भूल जाता है। सेवा जो है वो इतना बिजी कर देती है कि बुद्धि ऐसे चलने लगती है कि उसमें पता ही नहीं चलता है क्या कर रहे हैं, और जैसे फिर काम पूरा हो जाता है फिर से मैं फरिश्ता हूं, ऐसी विडंबना है, ऐसी स्थिति है। एक्चुअली हमारा जो 9 बजे के पहले का भाग है और शाम का जो 5 या 6 जिसकी जैसी ड्यूटी, ये केवल बैकग्राउंड है, ये केवल तैयारी है। हम ऑनलाइन कब होते हैं, स्टेज पर, जो हमारा कर्म क्षेत्र है वही तो टाइम है जब हमें टेस्ट होगी हमारी, एक सेकंड में ओम शांति स्वरूप में टिक जाओ, एक सेकंड में मन मना भाव, एक सेकंड में सुखमय अतिंद्रिय सुखमय अवस्था। तो बार बार दिन भर में अभ्यास करना है, दिन में जब बहुत सेवा है, बाबा ने कहा अति में अंत का अभ्यास करो, एक अव्यक्त वाणी है 82 की, अति में अंत का अभ्यास करो, अति अर्थात जब सेवा की अति हो, इतने ज्यादा बिजी हो, इतने काम करने, ये भी करना है वो भी करना है, यहां भी जाना है वहां भी जाना है, इससे भी बात उससे भी बात, अति में अंत की अवस्था का, अंत अर्थात अव्यक्त स्थिति, परम उपराम साक्षी, उस स्थिति का अभ्यास यहां करना है। यही तो हमारी साधना है। हमारी साधना वो नहीं है जंगल में जाके चुपचाप मौन हो जाओ बैठ जाओ, पूरा मौन हो जाना बहुत आसान है। कहते हैं स्पीच जो है वो क्या है, सिल्वर, और डायमंड क्या है, और गोल्ड क्या है, साइलेंस, और डायमंड क्या है, फिर स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड, देन व्हाट इज डायमंड, कंट्रोल्ड स्पीच इज डायमंड। जो स्पीच कंट्रोल्ड है दैट इज डायमंड, वो जो बीच की अवस्था है वो ही मुश्किल होती है, उसी को तो पाना है, वही तो योगी जीवन है, वही तो योगेश्वर की लाइन में आना है। सब कुछ छोड़ के ज्ञान योग करना बहुत आसान है, सेवाओं में बहुत सारी चीजें डायल्यूट हो जाती है। अगर हमें कहा मधुबन में आ जाओ, मधुबन में आपको कोई सेवा नहीं है, केवल 18 दिन केवल तपस्या करो, 18वें दिन बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच जाएंगे, पर 19वें दिन जैसे ही परिस्थिति आई उस शिखर से सीधा नीचे, यह सौदा कैसा रहा। इसके लिए प्रतिपल हर समय अभ्यास करना है। तो पहला होमवर्क बाबा ने कहा दिया है, दिल में बाबा समाया हुआ रहा, पॉइंट्स निकालो, कौन कौन सी बातें हैं जो बाबा को हमारे दिल से निकालता है बाहर, मेरे जीवन में वो कौन कौन सी पॉइंट्स है, बातें हैं जो बाबा को बाहर करता है, एक। दूसरा होमवर्क है सारे दिन भर में बीच बीच में छोटा छोटा अभ्यास। अगला होमवर्क है अतीन्द्रिय सुखमयी अवस्था में टिकना, यह अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, सुखमयी सुखदाई, हमेशा बाबा ने कहा सुखमयी अवस्था का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया है, अतीन्द्रिय सुखमयी अवस्था। यह अवस्था क्या होती है, कैसे बनाए, क्या पुरुषार्थ इसके लिए करे, इस अवस्था में बाधा क्या क्या है, इस अवस्था से फायदे क्या क्या है, जो लिख सके है वो लिखे इसके ऊपर, जो चिंतन कर सके बहुत सुंदर चिंतन करे। ज्ञान सरोवर में जो वातावरण है चिंतन के लिए उपयुक्त वातावरण है। ऐसा मौन, ऐसा एकांत कहां और मिलेगा संसार में। ऐसे शुद्ध वाइब्रेशंस, ऐसा शुद्ध वायुमंडल, इसमें विचार देह के भान से ऊपर जाते हैं और स्वतः ही चेतना उस तल तक पहुंचती है जहां वह व्यक्त स्थिति अतीन्द्रिय का अनुभव होता है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात वह सुख जो इंद्रियों की सहायता के बगैर प्राप्त किया जाए, वह सुख नहीं जो इंद्रियों से मिलता है, इंद्रियों से जो परे है वह सुख, उस सुख का अभ्यास करना। और चाहिए क्या, इसमें ही सब कुछ है बाबा ने कहा। और इसकी प्रैक्टिस करो, इसका अभ्यास करो, इसकी ट्रायल करो। क्या हम करें कि इससे प्रैक्टिस हमारी बढ़ जाए, क्या हम करें इसका ट्रायल करो, ट्राई इट आउट। और बार बार अभ्यास करो, बार बार अटेंशन, एक बार अटेंशन नहीं, बार बार अटेंशन, जब जब अटेंशन कम हो बार बार अटेंशन। ये एक साधना है, ये एक तपस्या है। तो कल की मुरली और आज की मुरली, बीच में अंतर है 16 साल का, परंतु बाबा एक ही है, नया बाबा और पुराना बाबा नहीं है, ठीक है। ऐसे चारों ओर के महान आत्माओं को, ऐसे बाप समान बनने वाली आत्माओं को, ऐसे एक बाप दूसरा ना कोई ऐसी आत्माओं को, ऐसे बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने वाली महावीर आत्माओं को, ऐसे परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाने वाली विश्व परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे निश्चय बुद्धि हो प्रत्यक्ष स्वरूप को दिखाने वाली ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।